नमस्कार, आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय पर बात कर रहे हैं।
जी,
पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक खास उद्बोधन है, हमारी स्वयं की गायत्री उपासना कैसे फली।
हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन है उनका।
स्रोत तो खैर पूज्य गुरुदेव का ही उद्बोधन है, और कोशिश ये रहेगी समझने की कि भाई गुरुदेव की गायत्री साधना इतनी कामयाब क्यों रही। मतलब बहुत लोग हैं जो वही मंत्र जपते हैं, नियम भी वही अपनाते हैं, पर वो अनुभव नहीं मिलते उन्हें।
सही बात है।
जबकि गुरुदेव ने तो कहा, मेरे नस नस में गायत्री पर्व घुसा हुआ है, ये मेरी माँ है, इतनी गहरी निष्ठा।
बिल्कुल।
तो आखिर क्या राज था उनकी उपासना में, क्या खास था, चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज।
जरूर। और देखिए, पूज्य गुरुदेव खुद इस अंतर पर रोशनी डालते हैं। वो मानते थे कि हाँ, लोग चमत्कारों की बातें सुनते तो बहुत हैं, पर अनुभव शायद कम ही कर पाते हैं, जबकि उन्हें खुद बहुत गहरे अनुभव हुए।
अच्छा।
हाँ, और वो सवाल भी यही उठाते हैं कि भाई अक्षर वही है, माला भी वही है, विधि विधान भी वही है, तो फिर ये फर्क क्यों आ जाता है।
हाँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी था।
यहीं पर वो पात्रता की बात करते हैं, मतलब योग्यता विकसित करने की।
पात्रता यानी कि एक तरह की तैयारी, जैसे अच्छी फसल चाहिए तो पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है।
क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनके गुरुदेव ने उन्हें यही सिखाया था, साधना अपनी करनी होती है, भगवान की नहीं।
अच्छा, साधना अपनी भगवान की नहीं, ये थोड़ा समझाएंगी।
हाँ, मतलब ये कि भगवान तो कृपा बरसाने को तैयार हैं, जैसे बादल, वो तो सब जगह बरसते हैं ना।
हाँ, बरसते तो हैं,
पर पानी टिकता कहाँ है? उसी गड्ढे में जिसकी मिट्टी मुलायम हो, तैयार हो, चट्टान पर तो पानी बह जाता है। तो पहले आत्म सुधार करना है, खुद को उस लायक बनाना है, पात्र बनाना है, फिर दैवीय अनुदान या कृपा कहें, वो अपने आप मिलती है।
ओह, तो मतलब सारा जोर, सारा फोकस बाहरी चीजें या कोई सिद्धि पाने पर नहीं था।
बिल्कुल नहीं,
बल्कि खुद को बदलने पर, खुद को योग्य बनाने पर था।
यही तो सबसे अहम, सबसे खास बात है। पूज्य गुरुदेव ने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति स्वयं पर लगाई। उन्होंने आदर्शों को, उत्कृष्टता को ही भगवान माना और अपना पूरा जीवन उसी के लिए लगा दिया।
अच्छा।
उनका नजरिया कभी लेने का रहा ही नहीं, शुरू से आखिर तक बस देने का, जैसे ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां तक दे दी थीं।
हाँ हाँ, लोक कल्याण के लिए।
बिल्कुल, अपनी सारी योग्यता, सारी क्षमता, सब कुछ उन्होंने आदर्शों की स्थापना के लिए अर्पित कर दिया।
तो ये जो समर्पण था और आदर्शों के लिए जो निष्ठा थी, ये उनके रोजमर्रा के जीवन में कैसे दिखती थी? मतलब क्या ये बस पूजा पाठ या ध्यान तक ही था?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो पूज्य गुरुदेव की बात एकदम अलग हो जाती है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था।
अच्छा।
उन्होंने इस समर्पण को जीने का तरीका बनाया, और इसके तीन खास अंग थे, या कह लें स्तंभ थे, जो उनके व्यक्तित्व में रचे बसे थे।
तीन स्तंभ कौन कौन से?
उपासना, साधना और आराधना।
उपासना, इसका मतलब तो हम आमतौर पर यही समझते हैं कि भगवान के पास बैठना, भक्ति करना। गुरुदेव का क्या मतलब था इससे?
उनका मतलब बहुत गहरा था। उपासना यानी ईश्वर, या कहिए अपने आदर्शों के इतने करीब चले जाना कि आप उन्हीं में मिल जाएं, एकाकार हो जाएं।
एकाकार।
हाँ, पूरी तरह समर्पित। जैसे जैसे कोई लकड़ी है, वो आग के पास जाए तो खुद आग बन जाती है ना।
हाँ, बन जाती है।
बस वैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ अपने आदर्शों के लिए सौंप दिया। इसमें कुछ मांगने का भाव नहीं था।
कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं, केवल देना, अर्पण करना, पूरी निष्ठा से, जैसे एक पतिव्रता स्त्री का भाव होता है अपने पति के प्रति।
ये हुई उपासना, और दूसरा स्तंभ आपने बताया साधना। अब ये शब्द सुनते ही तो मन में आता है कठिन तपस्या, शरीर को कष्ट देना।
हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं।
क्या गुरुदेव का मतलब यही था, या इसका रोज की जिंदगी से भी कोई ताल्लुक है?
वो कष्ट देना नहीं है, ये है अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, अपने समय का सही इस्तेमाल करना, पैसे का सही उपयोग करना, एक कड़ा अनुशासन।
आत्मानुशासन।
हाँ, और लगातार खुद को बेहतर बनाना, अपनी कमजोरियों से, अपनी बुरी आदतों से लड़ना, जैसे धोबी कपड़े को कैसे पीट पीट कर साफ करता है।
हाँ, उसका मेल निकलता है।
बस वैसे ही खुद को निर्मल बनाना। पूज्य गुरुदेव ने खुद बताया है कि उन्होंने 24 साल जौ की रोटी और छाछ पर गुजारे।
24 साल सिर्फ जौ की रोटी और छाछ? यकीन नहीं होता, ये तो बहुत बड़ा आत्मसंयम है, संकल्प है,
है ना? और ये उनकी साधना का एक हिस्सा था। मकसद क्या था? उस जीप को साधना, उसे पवित्र करना, जिससे उन्हें मंत्र बोलने थे, ज्ञान देना था।
अच्छा, जीभ का संयम।
हाँ, खुद को तराशना था, बिल्कुल पैना बनाना था, एक तेज चाकू की तरह।
समझ गया, उपासना, साधना और तीसरा स्तंभ
आराधना।
इसका क्या अर्थ था गुरुदेव के लिए?
आराधना का मतलब था ईश्वर की सेवा, और पूज्य गुरुदेव के लिए ईश्वर यानी वही आदर्श, वही सिद्धांत जिनके लिए वो जिए।
तो मतलब समाज की सेवा।
हाँ बिल्कुल, लोक मंगल, समाज में अच्छी सोच फैले, अच्छे काम हो, सत प्रवृत्तियां बढ़े, इसके लिए अपना समय, अपना श्रम, अपनी प्रतिभा, उसका एक एक कण लगा देना। वो दिन में 12-12 घंटे बल्कि उससे भी ज्यादा लगातार लोकहित में लिखते थे, बोलते थे, लोगों से मिलते थे, यही उनकी सच्ची आराधना थी।
ये बात तो सच में बहुत सोचने वाली है, क्योंकि हम अक्सर क्या देखते हैं, लोग पूजा पाठ, माला जपना, ये सब तो करते हैं।
हाँ करते हैं,
लेकिन उसको अपने रोज के जीवन से, अपने काम से, अपने व्यवहार से बिल्कुल अलग रखते हैं।
बिल्कुल।
गुरुदेव इस तरह के बंटवारे को कैसे देखते थे?
अरे वो तो इसके सख्त खिलाफ थे, बहुत कड़ी आलोचना करते थे इसकी। वो कहते थे, भाई ये कैसे हो सकता है कि आप उपासना में तो योग यानी त्याग की बड़ी बड़ी बातें करें, और असल जिंदगी में भोग यानी बस इकट्ठा करना, स्वार्थ साधना, इसी में लगे रहे। ये तो ऐसे हुआ जैसे आप साबुन से कोयले का काम लेना चाहें।
हाँ, सही कहा।
उनके हिसाब से आध्यात्मिकता कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है, उसे तो आपके व्यक्तित्व में घुल जाना चाहिए, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए।
तो क्या क्या गुरुदेव का ये मतलब था कि जब कोई इंसान इस तरह उपासना, साधना और आराधना से अपने अंदर बदलाव लाता है
जी,
तो फिर ये बाहरी चमत्कार या सिद्धियां वगैरह या तो अपने आप गौण हो जाती हैं या फिर स्वाभाविक रूप से मिल जाती हैं?
बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल यही। उन्होंने अपने कुछ अनुभवों का, कुछ सिद्धियों का संकेत भी दिया बातों बातों में, मानवता का भाग्य बदलने जैसी बड़ी बातें भी कही।
अच्छा।
हाँ, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि इन सब का स्रोत, इन सब का कारण उनकी यही तीन आयामी जीवन साधना है।
मतलब अंदर का बदलाव और समर्पित कर्म।
हाँ, ये उसी का नतीजा है, किसी बाहरी क्रियाकांड का या किसी टोटके का नहीं। चमत्कार होते हैं पर वो पात्रता विकसित करने से होते हैं, जीवन को आदर्शों के सांचे में ढालने से होते हैं।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री उपासना हो या कोई भी आध्यात्मिक साधना,
हाँ,
वो असल में तभी फल देती है जब हमारा ध्यान भारी लाभ या चमत्कारों को खोजने के बजाय खुद को बदलने पर हो,
अंदर से शुद्ध होने पर।
सही, आदर्शों के प्रति पक्की निष्ठा रखने पर और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने पर।
आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है, यही पूज्य गुरुदेव का साफ संदेश है, और वो सबको इसी रास्ते पर चलने के लिए बुलाते हैं। कहते हैं शुरुआत करो, चाहे धीरे धीरे ही सही। प्रज्ञा अभियान का जिक्र भी उन्होंने इसीलिए किया था कि ज्ञान और विवेक को जीवन में उतारना है, बस बातें नहीं करनी
जी,
और दूसरों के लिए कुछ करने की, देने की क्षमता का विकास है, तो फिर जीवन में सफलता की हमारी परिभाषा क्या होनी चाहिए।
वाकई ये सोचने वाली बात है,
इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति।